और शांति ये बाहर की चीजों का विषय नहीं है, ये अपने अंदर का विषय है। और अंदर के विषय को जानने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मैं कौन हूं। तो खुशी मेरी मनोस्थिति में है। एक व्यक्ति को डनलप के गद्दों पर बिठा दो, बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन भी उसके सामने हो, सारी सुविधाएं हो, एसी रूम में बैठा है, लेकिन उसके मन में कोई तनाव है, कोई चिंता है, तो वो उन अच्छे गद्दों पर भी अच्छी नींद नहीं ले सकता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसके मन में धीरज है, संतोष है, शांति है, अगर वो रूखी रोटी भी खाएगा और फरस पर भी लेट जाएगा तो वहां भी उसे नींद आ जाएगी। तो खुशी कहाँ है? खुशी मेरे मन की स्थिति में है। और मेरे मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? क्या किसी दूसरे के या अपने आप के? अपने ही कंट्रोल में है। लेकिन उस पर कंट्रोल क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि मुझे पूरी तरह से ये पता ही नहीं कि मैं कौन हूं और मेरा मन जो है वो कैसे कार्य करता है। तो आज का जो विषय है उसमें हम इसी चीज को जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि उस मन को हम ठीक कैसे करें। आज इंसान के जीवन में बहुत सारा तनाव है, स्ट्रेस है, और स्ट्रेस क्या चीज है? स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर्स डिवाइडेड बाय इनर स्ट्रेंथ। आज जीवन में प्रेशर बहुत सारे हैं, लेकिन उनको फेस करने के लिए जो आंतरिक शक्ति है वो हमारे पास नहीं है। और आज का जो विषय है उसको समझने से हम उसी चीज को समझ पाएंगे कि हम उस स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं आत्मज्ञान के द्वारा। मनुष्य के जीवन में हम देखते हैं बचपन से लेकर, छोटा सा बच्चा होता है ना, नेक्स्ट डे उसका पेपर है तो वो भी कहेगा मम्मी आज मुझे बड़ा टेंशन हो रहा है, जबकि वो टेंशन की डेफिनेशन भी नहीं जानता है, लेकिन वो उसको फील करता है। तो छोटे से लेकर बड़े तक हर व्यक्ति के जीवन में तनाव है, और उसे खत्म करने के लिए ही मेडिटेशन की जरूरत है। तो ये जो राजयोग शिविर है, सुबह के समय हर दिन इसका सत्र रहेगा, आज का पहला सत्र है। तो राजयोग क्या है? योग माना मिलन, आत्मा का मिलन ईश्वर के साथ, और ईश्वर सर्वशक्तिवान है, उनके साथ जब हम अपने मन को जोड़ते हैं तो हमें अनंत शक्तियां मिलती हैं। तो योग माना मिलन, और राजयोग किस लिए है? कि ये सभी योगों का राजा है, सर्वश्रेष्ठ योग है, और उस परमात्मा से योग करने से हम अपनी कर्म इंद्रियों का राजा बन जाते हैं। जीवन में अशांति और तनाव क्यों है? क्योंकि आज इंसान सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है, और करता कुछ और है, यानी अपनी कर्मेंद्रियों पे उसका कंट्रोल नहीं है। लेकिन जब हम राजयोगी बनते हैं तो अपनी ही कर्मेंद्रियों के हम मालिक बन जाते हैं। और राजयोग शिविर का जो महत्व है, योग का जो महत्व है, वो हर व्यक्ति के लिए है। कई बार हम सोचते हैं कि जो स्पिरिचुअलिटी है वो तो बड़े बूढ़ों का विषय है, जब बुजुर्ग हो जाएंगे तब कुछ ध्यान मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे। लेकिन खुशी और शांति हमें जीवन की हर स्टेप पर चाहिए या केवल बुढ़ापे में चाहिए? कब चाहिए? हर स्टेप पर चाहिए, और हर फील्ड में चाहिए। एक छोटे से बच्चे को भी पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करना है, उसको एकाग्रता की शक्ति चाहिए, मेमोरी शार्प हो जाए, तो इसलिए स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है, स्पोर्ट्समैन के लिए जरूरी है, बिजनेस करने वालों के लिए जरूरी है, क्योंकि बिजनेस में भी हमें डिसीजन पावर चाहिए, निर्णय शक्ति चाहिए, और वो निर्णय शक्ति भी मेडिटेशन से प्राप्त होती है। अपने गृहस्थ जीवन के अंदर भी सुख शांति के लिए हमें मेडिटेशन सीखना बहुत जरूरी है। और ऐसी खुशनुमा जिंदगी के लिए जो सबसे पहला विषय है। आज इंसान दुनिया में बहुत कुछ जान लेता है, बहुत कुछ पढ़ लेता है, बहुत कुछ सीख लेता है, लेकिन अपने आप को नहीं जानता है। तो आज का विषय है स्वयं की खोज। आप कहेंगे अपने विषय में तो हम जानते ही हैं, लेकिन जो हम जानते हैं वो हमारा पूरा परिचय नहीं है। आप में से किसी से भी पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो अपना नाम बता देंगे, अपना प्रोफेशन बता देंगे, अपनी जाति बता देंगे, अपना धर्म बता देंगे, लेकिन ये हमारा कंप्लीट परिचय नहीं है। जो हमारा प्रोफेशन का परिचय है, मैं एडवोकेट हूं, मैं जज हूं, जब हमने वो पढ़ाई की, वो सफर तय किया, उस पद पर आए, तो वो हमारा परिचय बना, लेकिन मैं तो उससे पहले भी था। अगर हम नाम से परिचय देते हैं तो नाम जन्म के कुछ दिन बाद रखा गया था। जिस दिन मैं पैदा हुआ था उस दिन वो मेरा नाम नहीं था। तो इसलिए हम जो भी परिचय देते हैं वो केवल मात्र इस फिजिकल बॉडी का देते हैं, इस शरीर का देते हैं, और हम केवल ये शरीर नहीं, इससे अलग कुछ हैं। इसीलिए कहा जाता है नो दाई सेल्फ, रियलाइज दाई सेल्फ। विवेकानंद जी जब प्रथम बार अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए और उन्होंने बाहर से द्वार खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, कौन? तो विवेकानंद जी ने कहा, यही तो मैं जानने आया हूं कि मैं कौन हूं, यही मैं जानने आया हूं। तो वो मैं कौन हूं? अब देखो, जिस शरीर का हम परिचय देते ना, वो तो केवल हड्डी मांस का पुतला है। मैं केवल ये शरीर नहीं हूं, इससे भिन्न एक चेतना है, एक शक्ति है, जिसे कोई आत्मा कहता, कोई चेतना कहता, कोई प्राण कहता, कोई रूह कहता। ये शरीर तो केवल हड्डी मांस का पुतला है, इसके अंदर जो चेतना शक्ति है, उन दोनों के मेल से हम जीव आत्मा या जीवित मनुष्य कहलाते हैं। तो इस शरीर की रचना तो हमें विज्ञान ने भी स्पष्ट कर दी है, किसके अलग अलग ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, लेकिन आत्मा क्या चीज है, आज हम उसको अच्छी तरह से जानेंगे। तो वो जो आत्मा है हम सबके अंदर, वो एक अति सूक्ष्म ज्योति का सितारा है, एक पॉइंट ऑफ लाइट है, सूक्ष्म प्रकाश पुंज है जो हमारे मस्तक के मध्य में विराजमान है, एक अति सूक्ष्म चेतना। और उस चेतना के अंदर ही इतनी शक्ति है कि हमारा ये जो इतना बड़ा शरीर है ये चेतन होता है जब तक वो इसके अंदर है, और जैसे ही वो चेतना इसमें से निकल जाती है तो शरीर के सभी अंग होते हैं, आंखें खुली हैं पर देख नहीं सकते हैं, कान हैं पर बोल नहीं सकते हैं। तो वो जो इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म पॉइंट है, वो चेतना जो है आत्मा, वो जो स्पिरिट है, वो एक ऊर्जा है, वो क्या चीज है? तो आत्मा और शरीर दो बिल्कुल भिन्न चीजें हैं। शरीर की रचना तो हमें विज्ञान ने भी स्पष्ट कर दी है कि ये किस तरह से काम करता है, लेकिन आत्मा क्या चीज है? ये शरीर जो है इसका स्वरूप बदलता रहता है। छोटा बच्चा होता है, फिर धीरे धीरे शिशु अवस्था से किशोर अवस्था, फिर युवा अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था, और फिर से आत्मा शरीर छोड़कर के छोटे बच्चे में जाकर के प्रवेश करती है। इस शरीर की जो अवस्थाएं हैं वो बदलती रहती हैं, लेकिन आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती है। आत्मा के लिए गीता में कहा है अजर अमर अविनाशी है, जिसको ना शस्त्र काट सकते हैं, ना पानी गला सकता है, ना वायु सुखा सकती है, ना अग्नि जला सकती है। तो हम सबके अंदर वो चेतना है, वो शक्ति है जो अजर अमर अविनाशी है। तो आत्मा और शरीर के अंतर को समझना भी जरूरी है, क्योंकि आज हम कंप्लीट ये जो हमारा शरीर है आत्मा और शरीर दोनों के मेल से जो हम जीवात्मा हैं, तो इसी को जीवन समझते हैं, लेकिन शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है। जड़ का मतलब बिना आत्मा के ये शरीर कोई अनुभूति नहीं कर सकता। और इस शरीर का हमें पता है कि ये पांच तत्वों का पुतला है। शरीर को क्या कहते हैं हम? पंच भौतिक, जल वायु पृथ्वी अग्नि और आकाश। और जैसे ही ये शरीर छूटता है और इसका संस्कार हो जाता है तो सभी तत्व अपने तत्वों में मिक्स हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर जो चेतना है आत्मा वो कौन से तत्वों से बनी हुई है? तो उस आत्मा के अंदर मूल रूप से सात गुण हैं, जिनको कहेंगे ज्ञान, सुख, पवित्रता, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति। तो शरीर पांच तत्वों का पुंज है और आत्मा किसका पुंज है? सात गुणों का पुंज है, इसेंस ऑफ सेवन वैल्यूज। और देखो ये जो सात गुण है ना, हर आत्मा की जो भागदौड़ है वो इन्हीं गुणों की तरफ होती है। हर इंसान जीवन में क्या चाहता है? शांति। हम चाहते हैं ना, कहेंगे चाहे रूखी रोटी मिल जाए पर भाई शांति होनी चाहिए। सुख हर व्यक्ति चाहता है, चाहे वो दूसरों को दुख देता रहे पर खुद क्या चाहेगा? मैं सुखी रहूं। प्रेम सबको अच्छा लगता है, पशु पक्षी को भी अच्छा लगता है। जिसको जीवन में प्रेम ना मिले जीवन भर तो क्या कहेगा? इससे तो जीना ही बेकार है। जीवन में शांति ना हो, खुशी ना हो तो कहेंगे इससे तो जीवन ही ना हो तो अच्छा है। तो इसका मतलब जीवन किसका नाम है? इन सेवन वैल्यूज का नाम जीवन है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, ये सेवन वैल्यूज का पुंज है वो ज्योति पुंज आत्मा। जब वो आत्मा इस शरीर में आती है और हम जीवन में कर्म करते हैं, धीरे धीरे हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, अपने आत्म स्वरूप को भूल जाते हैं, तो तब ये सुख, शांति, पवित्रता धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे ये कम होती है तो इनका स्थान अशांति, टेंशन, तनाव, डिप्रेशन, ये सब चीजें ले लेती हैं। तो अपने मूल गुणों की कमी, जैसे ये शरीर पंच भौतिक है तो पांच तत्वों में से किसी भी तत्व की कमी होती है तो हम शारीरिक रूप से बीमार होते हैं, है ना? पानी की कमी हो जाए, किसी विटामिन्स की कमी हो जाए, हम बहुत दूर से चल करके आते हैं, पसीना आया, प्यास लगती है, तो उस समय हमें पानी ही चाहिए। उस समय कोई कहे भोजन कर लो, दूध पी लो, नहीं, पानी चाहिए। पानी क्यों चाहिए? क्योंकि शरीर पानी से बना हुआ है। 70% हमारी इस बॉडी के अंदर पानी है। तो वो जो वाटर लेवल डाउन होता है तो हम इरिटेशन फील करते हैं, पानी चाहिए। इसी तरह आत्मा सात गुणों का पुंज है, तो जिस भी गुण की कमी होती है तो उस कमी के कारण जीवन में अशांति होती है, या हम कहें कि आत्मिक रूप से हम बीमार हो जाते हैं। चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, शांति कम हुई तो उसका स्थान क्रोध ले लेता है, सुख कम हुआ तो उसका स्थान दुख ले लेता है। वो चीजें अपने आप आ जाती हैं, वो अभाव का नाम है, अभाव। बॉडी में पानी का अभाव है तो बीमारी अपने आप आ जाती है। तो इस तरह से ये सात गुणों की कमी होती है तो जीवन अशांत होता है। तो हम आत्मा को जानने के साथ साथ ये जो सात गुण हैं, इसको मेडिटेशन से हम कैसे जीवन में भर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आत्मा और शरीर की भिन्नता, शरीर नाशवान है, एक ना एक दिन जरूर खत्म होगा, आत्मा अमर है। ये शरीर जो है ना, इसके अंदर जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं वो घोड़ों के समान है, पांच घोड़ों के समान, और आत्मा जो है वो सवार है, मालिक है, जो इन सब कर्मेंद्रियों की लगाम आत्मा अपनी बुद्धि के द्वारा पकड़ के रखती है। अगर हम आत्म स्मृति में हैं तो ये कर्मेंद्रियों के घोड़े ठीक दिशा में चलते हैं, और नहीं तो ये चंचलता करते हैं। तो कर्मेंद्रियां कर्मचारी हैं और आत्मा जो है वो राजा है। आत्मा और शरीर में और भी अंतर है कि ये शरीर केवल इंस्ट्रूमेंट है और आत्मा इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करने वाली शक्ति है। जैसे ये माइक इंस्ट्रूमेंट है लेकिन इसको यूज करने वाला अलग है, तो इस प्रकार से आत्मा और शरीर बिल्कुल भिन्न है। अब हम चलते हैं आत्मा के सूक्ष्म परिचय की तरफ कि वो जो चेतना है, वो जो हमारे अंदर एक स्पिरिट है, वो क्या चीज है। तो आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं। सबसे पहली शक्ति है मन, और ये आत्मा की सबसे पावरफुल पावर है। आत्मा के अंदर मन, मन जो हमारी विचार शक्ति है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारे मन में अनेक तरह के विचार उठते हैं। फिर जो दूसरी शक्ति है हमारी, वो है बुद्धि। मन में विचार उठते हैं और बुद्धि उसके ऊपर डिसीजन लेती है, तो जो हमारी डिसीजन पावर है वो है बुद्धि। और फिर तीसरी शक्ति है आत्मा की संस्कार। मन में विचार उठता है, बुद्धि निर्णय करती है, और उसके बाद हम कोई भी कर्म करते हैं और उस कर्म की सूक्ष्म इंप्रेशन हमारी आत्मा पर पड़ती है, और वो इंप्रेशन पड़ते पड़ते धीरे धीरे हमारे आदतें डेवलप होती हैं, जिसको ही संस्कार कहते हैं। एक बार संस्कार बन गया ना, तो वो एक बहुत पक्की चीज हो जाती है, और वो संस्कार फिर हमारे मन को चलाने लग जाता है, और फिर जो बुद्धि है वो भी संस्कारों के अनुसार फैसले करने शुरू कर देती है। एक चोर की बुद्धि क्या फैसला करेगी, चोरी करना सही है। एक संत की बुद्धि क्या फैसला करेगी, चोरी करना पाप है। बुद्धि तो दोनों में है, जो लोग गलत काम करते हैं वो भी बहुत बुद्धि होती है उनके अंदर, लेकिन उनकी बुद्धि नेगेटिव दिशा में काम करती है। तो इसलिए मन, बुद्धि और संस्कार ये एक दूसरे को भी प्रभावित करते हैं। तो अगर हमने इस सर्कल को, आज देखो इंसान धीरे धीरे गलत कर्म करता गया, उसके संस्कार गलत पक्के हो गए, इसलिए मन में विचार भी गलत ही उठते हैं, बुद्धि निर्णय भी गलत ही करती है। अब ये जो एक नेगेटिव सर्कल बन गया जीवन के अंदर, अगर इस सर्कल को तोड़ना है तो हमें इसमें इन तीनों में से पहले किस पर अटैक करना पड़ेगा, किस पर? मन पर। बहुत अच्छा। अब उसी मन को हम देखते हैं। मन के लिए अक्सर हम क्या बोलते हैं कि मन तो बड़ा चंचल है, ये मन चंचल घोड़े की तरह है, है ना, ये तो सारा दिन दौड़ता ही रहता है। लेकिन घोड़ा बुरा नहीं होता है, घोड़ा तो आपको अच्छी सवारी भी करा देता है, लेकिन उस घोड़े पर जो सवार है, अगर वो होश में बैठता है, अगर वो लगाम को पकड़ के रखता है, बुद्धि रूपी लगाम को, मन रूपी घोड़े की बुद्धि रूपी लगाम को, तो वो जहां चाहे उसको सैर करा देगा। लेकिन यदि सवार घोड़े के ऊपर तो बैठ जाए पर बेहोश होकर के बैठे, नशे में बैठे और लगाम को छोड़ दे, तो घोड़ा क्या करेगा, जरूर वो जहां चाहेगा उसको ले जाएगा, गिराएगा, नुकसान करेगा। तो इसलिए ये जो मन है, ये तो एक बहुत बड़ी शक्ति है, संकल्प शक्ति। इस मन की शक्ति को एकाग्र करके वैज्ञानिकों ने बड़ी बड़ी खोज की है, लेकिन इस मन का दुरुपयोग किया जाए तो ये बहुत गिरावट में भी ला सकता है। तो मन में मुख्य रूप से चार तरह के विचार चलते हैं दिन भर में। एक होते हैं पॉजिटिव थॉट्स, अच्छे विचार, जिसमें हम अपने बारे में या दूसरों के बारे में कुछ ना कुछ अच्छा सोचते हैं। दूसरे होते हैं नेगेटिव थॉट्स, जिसमें हम कुछ ना कुछ गलत सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। और तीसरे होते हैं वेस्ट थॉट्स, हम ऐसे ही सोच रहे हैं फालतू में, कभी पड़ोसी के बारे में, कभी पॉलिटिक्स के बारे में, जबकि मेरा कुछ उससे लेना देना नहीं है ज्यादा, फिर भी सोचते ही जा रहे हैं। कभी बीती बातों को सोचते हैं, कभी भविष्य की चिंता करते हैं कि पता नहीं बुढ़ापे में क्या होगा। तो ये वेस्ट थिंकिंग है। और एक होती है साधारण विचार, सिंपल थॉट्स, जो हमारी दिनचर्या से, कारोबार से संबंधित होते हैं। अब इन चारों में से आज इंसान को जो ज्यादा विचार चलते हैं वो कौन से चलते हैं? मैक्सिमम थॉट्स नेगेटिव, जवाब आया नेगेटिव। तो नेगेटिव ही क्यों चलते हैं? और जो नेगेटिव या फिर वेस्ट, ये दोनों तरह के विचार हमारी आत्मा की शक्ति को क्षीण करते हैं। जो हमारी बैटरी है ना, जिसमें 7 वैल्यूज हैं, उसको धीरे धीरे उस शक्ति को नष्ट करते हैं। अब देखो, मान लो बच्चा स्कूल से आने में लेट हो गया, तो मां को पहला विचार कौन सा आएगा? पहला विचार कौन सा आएगा? बहनें बताएंगी, कुछ ना कुछ नेगेटिव आएगा कि कभी एक्सीडेंट ना हो, कभी किडनैप ना हो गया हो। पॉजिटिव क्यों नहीं आता है? पॉजिटिव भी तो सोच सकते थे कि आज उसको स्कूल का फंक्शन होगा, कोई प्राइज मिलना होगा, कुछ अच्छा भी सोच सकते थे। लेकिन मन में नकारात्मक विचार ज्यादा चलते हैं, वेस्ट ज्यादा चलते हैं, और इसी से फिर जीवन में तनाव होता है, क्योंकि बैटरी आत्मा की डिस्चार्ज हो जाती है। और थॉट्स चलने के, मन के अंदर जो हमारे थॉट्स है ना, ये जीवन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे व्यक्ति के विचार होते हैं, वैसा ही उसका पूरा जीवन और भाग्य बनता है। कैसे बनता है? तो इस तरह से हम देखेंगे, थॉट से फीलिंग पैदा होती है, फीलिंग से एटीट्यूड बनता है, एटीट्यूड से एक्शन होती है, और एक्शन से हमारी हैबिट बनती है, और जो हमारी हैबिट है वो हमारी पर्सनैलिटी है, और जो हमारी पर्सनैलिटी जीवन में बनती है वही तो हमारा भाग्य है। तो भाग्य कुछ और नहीं है, भाग्य इंसान की सोच पर आधारित है। क्योंकि जीवन में अगर हम अच्छा सोचते हैं, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है दुनिया के अंदर, कि जो चीज हम सोचते हैं उन्हीं चीजों को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव सब तरह की जो एनर्जी है वो फ्लो कर रही है। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव संभावनाएं हमारे जीवन में अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। और जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो इस ब्रह्मांड की जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती है। अपनी तो नेगेटिव है ही है, लेकिन जो बाहर की नेगेटिव है उसको भी हमने एब्जॉर्ब कर लिया, तो जीवन की क्वालिटी, जीवन की स्थिति क्या बनेगी? इसलिए जैसी सोच वैसी फीलिंग। देखो, पॉजिटिव सोचने वाला खुशनुमा रहेगा, नेगेटिव सोचने वाला उदास परेशान। फिर धीरे धीरे जो चीज हम बार बार सोचते हैं वो हमारा दृष्टिकोण बन जाता है, वो हमारा नजरिया बन जाता है। हम दुनिया की हर चीज को वैसे ही देखना शुरू कर देते हैं। जिसका पॉजिटिव नजरिया होगा वो हर चीज में से कुछ अच्छा निकाल लेगा, और जिसका नेगेटिव नजरिया होगा वो अच्छे से अच्छे में से भी बुरे से बुरा निकाल लेगा और फिर परेशान रहेगा। इसलिए कहते हैं अच्छी सोच वाले को कीचड़ में भी कमल दिखता है और नेगेटिव सोच वाले को चंद्रमा में भी इतना सुंदर चांद, जिसकी तुलना सुंदरता से की जाती है, लेकिन नेगेटिव एटीट्यूड वाले को चांद में भी दाग दिखाई देंगे। तो ये कहां से चालू हो रहा है? विचार से। देखो कैसे जीवन बदल रहा है। थॉट से फीलिंग, फीलिंग से एटीट्यूड, दृष्टिकोण बना, और जैसा जिसका दृष्टिकोण होता है वैसे ही उससे कर्म होते हैं, वो काम भी ऐसे ही करेगा। नेगेटिव नजरिए वाला कुछ ना कुछ नेगेटिव कर्म ही करेगा, और फिर जैसा कर्म करेंगे वैसी ही जीवन में आदतें डेवलप होंगी, और वो आदतें जब पक्की हो जाती हैं तो उसी को संस्कार, उसी को पर्सनैलिटी कहते हैं। आज भी हम दुनिया में देखते हैं दोनों तरह के लोग होते हैं, एक ही घर में भी दोनों तरह की पर्सनैलिटी होती है। मान लो घर के अंदर कोई परिस्थिति आई, जिसका नजरिया पॉजिटिव होगा वो कहेगा ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं है, तो बातें आती हैं और चली जाती हैं। जिसका नजरिया नेगेटिव होगा कहेगा इतनी बड़ी बात आ गई, इतनी बड़ी बात। तो बातों के साइज हमारी सोच निर्धारित करती है। बात बड़ी नहीं होती इतनी, लेकिन अगर हम नेगेटिव हैं तो हमें राई भी पहाड़ दिखाई देगा, और अगर हम पॉजिटिव हैं तो हमें पहाड़ जैसी बात भी राई दिखाई देगी। तो इस तरह से हमारी पर्सनैलिटी बनती है, और वो पर्सनैलिटी ही हमारी डेस्टिनी है, वही हमारा भाग्य है। तो भाग्य का बीज कहां रखा है? किसी पंडित जी को हाथ दिखाने से भाग्य नहीं बदलेगा। भाग्य का बीज हमारे अंदर है। हमारे अंदर कहां है? हमारी सोच में है। तो जैसी हमारी सोच, जो हमारे थॉट्स, वही हमारी डेस्टिनी है। तो हम इस मेडिटेशन शिविर में इस स्पिरिचुअलिटी से, राज योग से, हम अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना सीखेंगे। अगर वो नेगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव सहज रूप से कैसे बना सकते हैं। अब विचार चलने के मुख्य रूप से दो तीन कारण होते हैं। कई बार व्यक्ति कहता है कि मैं गलत सोचना नहीं चाहता हूं, पर क्या करूं, सोच गलत चलती है। टेंशन है, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेंगे, दवाई देगा, साथ में कहेगा चिंता मत करना। लेकिन चिंता छूटे कैसे? वो इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है, क्योंकि वो खुद भी सारा दिन टेंशन में ही रहता है। तो टेंशन हटे कैसे? तो उसके लिए सबसे पहला जो कारण है कि सोच क्यों चलती है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है, जो हम अपने आप को फीड करते हैं, वही फिर हमारे विचारों में उभरती है। तो हम अपने विचारों में इन्फॉर्मेशन सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले कौन सी इंफॉर्मेशन जाती अंदर? क्या होता है हमारे हाथ में? क्या होता है? या तो न्यूज़पेपर और या तो मोबाइल। आजकल तो न्यूज़पेपर मंगाने की भी जरूरत नहीं, सब कुछ मोबाइल में है। फटाफट खोलेंगे, देखेंगे, और वो इंफॉर्मेशन कैसी होती है? मैक्सिमम नेगेटिव। जो नेगेटिव न्यूज होती है ना, वो न्यूज़पेपर में भी ऊपर ऊपर हेडलाइन में मोटा मोटा, आज जो है ना ये बस डूब गई, इतने लोग मर गए, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो न्यूज ज्यादा होती है, और वो हमने अपने अंदर सुबह सुबह डाल ली। अब वो जो माँ को विचार आया था ना बच्चे के लिए कि कभी एक्सीडेंट ना हो गया हो, तो वो कहां से आया एक्सीडेंट? क्योंकि वो सुबह सुबह वो भोजन खाया था, वो अंदर फीड किया था, और वही, और फिर आजकल सीरियल है, फोन की तो बात ही मत पूछो, मोबाइल के अंदर नेगेटिव, ईर्ष्या किस तरह से, और वो सारी चीजें, वो इंफॉर्मेशन जा रही है अंदर और वो हमारे थॉट्स क्रिएट करती है। कई बार सोचते हैं ना, पता नहीं क्यों चलते हैं विचार, तो ये कारण होता है। कुछ हमारे पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं कि एक बार मान लो कुछ ऐसा गलत हो भी गया किसी से, तो हम उस व्यक्ति को उसी नजरिए से, उस घटना को उसी नजरिए से देखते हैं, चाहे वो चेंज भी हो गई हो। और कुछ हमारे बिलीफ सिस्टम है, उसके कारण भी हमारे थॉट्स चलते हैं। कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जीवन के अंदर जो गलत हैं, और उसके कारण हमारे थॉट्स भी गलत चलते हैं। अब मुख्य बात है कि जीवन में खुशी भरने के लिए, जीवन को तनाव से मुक्त करने के लिए, हम अपने मन को शक्तिशाली कैसे बनाएं। सभी अपने मन को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं? कौन कौन हाथ खड़ा करेंगे? सभी, कोई एक भी नहीं है जो मन को शक्तिशाली, पावरफुल मनोबल को श्रेष्ठ ना बनाना चाहता हो। तो उसके लिए बहुत छोटा छोटा कुछ हल्का सा होमवर्क आपको देते हैं, आप उस पर चिंतन भी करना और उसे करने की कोशिश करना। तो सबसे पहली चीज है कि हम इस जीवन के अंदर ट्रस्टी भाव रखें, बी ट्रस्टी। जैसे एक नर्स होती है हॉस्पिटल के अंदर, सबकी सेवा करती है, लेकिन जब रोगी ठीक होकर के जाते हैं तो वो रोने नहीं लग जाती, वो अपना कर्तव्य पूरा करती है। तो हम भी इस जीवन में कुछ समय के लिए आए हैं, हम इस दुनिया के अंदर मेहमान हैं, हमें एक रोल मिला है, किसी को पुरुष का, किसी को स्त्री का, किसी को बच्चे का, किसी को बॉस का, किसी को जज का, किसी को वकील का, लेकिन ये रोल पूरा करके फिर मुझे वापस जाना है। और मैं एक सोल हूं, मैं रोल नहीं हूं, मैं एक सोल हूं और मेरा कुछ नहीं है। इस दुनिया के अंदर एक बड़ा सुंदर विधान भगवान ने बना रखा है कि जिस दिन आप इस जगत में आए थे, कोई भौतिक साधन आपके पास नहीं था, यहां तक कि एक चोला भी बाद में वस्त्र पहनाया जाता है, और जिस दिन इस दुनिया से विदा होंगे उस दिन क्या क्या लेकर जाएंगे, क्या क्या लेकर जाएंगे? केवल एक कफन का कपड़ा होगा जो ऊपर डाला जाएगा। तो जन्म से मृत्यु तक क्या कमाया भौतिक साधनों में? केवल एक कफन का टुकड़ा, बाकी कुछ नहीं ले जा सकते। कितनी भी जमीन जायदाद इकट्ठी कर ली हो, कितना भी बड़ा बैंक बैलेंस हो, बैंक की कॉपी में नाम काट दिया जाएगा, एक सुई भी नहीं जाएगी। इसलिए मेरा कुछ नहीं है, मैं ट्रस्टी हूं, इसी भाव से जीवन को जीना है। ठीक है, ट्रस्टी समझेंगे सब अपने आप को, मैं घर का मालिक नहीं हूं। मालिक समझते ही ईगो आ जाएगा, वो समझते ही अभिमान आ जाएगा, मैं तो केवल ट्रस्टी हूं, कुछ दिन के लिए रोल अदा कर रहा हूं। फिर सेकंड है, थिंक लेस थिंक पॉजिटिव, कम सोचो और अच्छा सोचो। हम इसके उलट करते हैं, ज्यादा सोचते हैं और नेगेटिव सोचते हैं। तो दिन भर में अपने आप से दो प्रश्न पूछा करो कि जो मैं सोचता हूं क्या ये सही है, इज इट राइट, और जो मैं सोचता हूं क्या ये जरूरी है। अगर जवाब आए कि ये सोचना सही नहीं है तो उस सोच को हमें स्टॉप लगाना चाहिए। अगर जवाब आए ये सोचना जरूरी है, आए कि नहीं इस सोच के बिना भी मेरा काम चल सकता है, कितनी सारी सोच होती है 90% जिसके बिना हमारा काम चल सकता है, लेकिन फिर भी हम सोचते जा रहे हैं। तो कोशिश करें कम सोचें और अच्छा सोचें। फिर एक चीज है, अवॉइड होल्डिंग नेचर, हमें अपने मन को पावरफुल बनाना है, अपने मनोबल को ऊंचा बनाना है। तो हमें जो पकड़ है ना, पकड़ना, उसको छोड़ना है। क्या पकड़ते हैं हम जीवन में? कोई भी बात हो गई, मान लो किसी के घर गए और उसने थोड़ा सा हमारा अच्छी तरह सम्मान नहीं किया, कुछ नहीं किया, 5 साल पहले 10 साल पहले किसी ने 2 शब्द हमें गलत बोल दिए जो हमें अच्छे नहीं लगे, अब वो 2 शब्दों ने 1 मिनट भी हमारा मुश्किल से खराब किया होगा, लेकिन उन 2 शब्दों को हमने जीवन में हजारों बार दोहरा लिया और जितना पेन उस समय हुआ था उतना ही पेन बार बार हुआ। तो जिस व्यक्ति ने 2 शब्द बोले थे, क्या उसने मुझे नुकसान ज्यादा किया या मैंने खुद को खुद नुकसान ज्यादा किया? किसने किया? देखो उसने जो बोला था ना, एक छोटा सा घाव, मान लो छोटा सा चोट आई हमारे को, वो थोड़े दिन में ठीक हो सकती थी, लेकिन किसी चोट को बार बार कुरेदते रहो तो क्या बन जाएगा? वो पूरा नासूर बन जाएगा। तो जीवन में बातों को पकड़ के मत रखो। कुछ चीजें आपने भी पकड़ रखी होंगी, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ ऐसा किया, वाइफ ने ऐसा किया, बच्चे ने ये किया, मतलब कुछ चीजें हम पकड़ के रखते हैं, और जितनी देर हम नेगेटिव चीजों को पकड़ के रखेंगे तो हम बोझिल हो जाएंगे। बोझिल, उसी को कहेंगे स्ट्रेस। एक छोटी सी चीज है ना, ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट, मुश्किल से ये 20-25 ग्राम का होगा, ये मैंने हाथ में पकड़ रखा है, अगर मैं इसको पूरा दिन पकड़ के रखूं तो हाथ में दर्द होगा या नहीं होगा? हालांकि इसमें वेट नहीं है, लेकिन लंबा समय पकड़ने से तकलीफ देगा। तो बातें बड़ी नहीं होती, लेकिन जब हम उन्हें पकड़ के रखते हैं लंबे समय तक, तो वो बातें हमारे लिए बोझ बन जाती हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं, जो बीत गया सो बीत गया, क्षमा कर दो, फॉरगिव एंड फॉरगेट, छोड़ दो उन बातों को। और ये हम उनको क्षमा नहीं कर रहे, ये हम अपने आप को क्षमा कर रहे हैं, क्योंकि जो पकड़ी हुई बातें हैं उनको छोड़ देंगे तो हमारी एनर्जी, हमारा समय बचेगा, हमारा बोझ उतरेगा। तो क्षमा करने से फायदा किसको होगा? अपने आप को होगा। तो क्या आप सभी ये संकल्प करेंगे? आज कुछ कुछ तो सबने जरूर पकड़ रखा है, आज इस कॉन्फ्रेंस हॉल में हम उसे छोड़ के जाएंगे। जो छोड़ के जाएंगे वो हाथ खड़ा करेंगे, वेरी गुड, अपने लिए ताली बजाएंगे अच्छी तरह। तो अवॉइड होल्डिंग नेचर। नेक्स्ट है ABCD फार्मूला, किसके लिए है? मन को शक्तिशाली बनाने के लिए। ए फॉर अवॉइड, कुछ चीजों को जीवन में अवॉइड करो, उनके बिना काम चल सकता है? हर चीज में घुसने की जरूरत नहीं है। पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है ना, बाहर क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा है बी फॉर बाईपास, कुछ चीजों को हम बाईपास करें। जैसे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है ना, तो बाईपास रोड बनाते हैं, अगर बीच में घुसेंगे तो टकराएंगे, चलो भाई आराम से जाओ। कुछ चीजों को हम बाईपास कर दें जिनसे हमारा ज्यादा लेना देना नहीं है। सी फॉर कैंसिल, कुछ चीजों को जीवन में पूरी तरह कैंसिल करें। नेगेटिव थिंकिंग है, कोई ऐसे व्यसन है जीवन के अंदर, बीड़ी सिगरेट शराब कुछ इस तरह की चीजें हैं, ईर्ष्या इस टाइप से, तो उन चीजों को मुझे ये नहीं करना है, क्योंकि मुझे बहुत खुशनुमा बनना है। तो इसलिए कुछ चीजों को कैंसिल करके चलें। और डी फॉर डू, जो चीजें जीवन में आवश्यक हैं, जो मेरे जीवन को बेहतर बनाने वाली हैं, उनको मैं करना शुरू कर दूं। जैसे मेडिटेशन करना शुरू कर दें, इसको अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें, तो इस तरह से हम इस फार्मूला को अपना करके भी अपने मन को पावरफुल बना सकते हैं। और ये प्रयास करें कि हमें सदा प्रसन्न चित रहना है, जैसे एक बच्चा होता है ना, कितना प्रफुल्लित होता है, कोई बोझ चिंता नहीं, तो अपने आप को ईश्वर का बच्चा मान लो तो वो हमारे सारे बोझ उठाएगा और हम सदा लाइट रहेंगे, हल्के रहेंगे, खुशनुमा रहेंगे। तो ये जो आत्मा का की जो पहली शक्ति है मन, मन क्या है, मन कैसे हमारे भाग्य को बनाता है और मन को हम पावरफुल कैसे बनाएं, उसके बारे में हमने चिंतन किया। फिर दूसरी शक्ति कौन सी थी आत्मा की, दूसरी कौन सी थी, बुद्धि। मन में विचार चलते हैं, बुद्धि उसके ऊपर निर्णय करती है, डिसीजन पावर है हमारी ये। लेकिन जब हमारा मन अच्छा हो जाएगा तो हमारी बुद्धि के निर्णय भी सही होंगे, और जिसके निर्णय सही होते हैं उसके कर्म सही होते हैं, और जिसके कर्म सही होते हैं उसका जीवन खुशनुमा हो जाता है। तो मन को ठीक करें और बुद्धि से निर्णय, फिर अपने आप ही अच्छा होगा। और फिर तीसरी चीज आत्मा में कौन सी थी, संस्कार। अब ये संस्कार क्या चीज है, मन में विचार उठा, बुद्धि ने निर्णय किया, फिर हमने काम किया। जो कर्म हम बार बार करते हैं उसकी इंप्रेशन पड़ती है हमारी आत्मा पर और उससे हमारे संस्कार बनते हैं। संस्कार एक बार पक्का हो गया ना तो उसको मिटाना जरा मुश्किल लगता है। जैसे देखो एक छोटा बच्चा है, जब वो पहली बार अपने दोस्तों के संग में, जब उसको दोस्त कहते हैं थोड़ा सा सिगरेट का टेस्ट ले लो, तो वो डरेगा, झिझकेगा, नहीं कर पाएगा, बड़ी मुश्किल से वो काम कर पाएगा। लेकिन जब दूसरी बार वो करेगा तो उसको पहली बार की बजाय कम डर लगेगा, और जब वो तीसरी चौथी बार करेगा तो आराम से स्मोकिंग कर लेगा, क्योंकि जो पहले कर्म किया उसकी इंप्रेशन पड़ गई और वो इंप्रेशन उसको गलत की तरफ आगे बढ़ने में मदद करती है। तो इस तरह से हमारे संस्कार बनते हैं। अब ये संस्कार पांच तरह से मिलते हैं इंसान को। कहते हैं ना आजकल बच्चों के संस्कार बड़े खराब हो रहे हैं, तो वो संस्कार पांच तरह से कैसे मिलते हैं, थोड़ा एकदम एक्टिव अलर्ट होके बैठेंगे सब, किसी की भी आंखें थोड़ी सी भी, क्योंकि ये चीज जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो पांच तरह के संस्कार हमारे कौन से हैं, एक होता है पूर्व जन्म के संस्कार। कुछ संस्कार आत्मा पूर्व जन्म से लाई है, एक ही घर में एक ही माता पिता के बच्चों की आदतों में बड़ा फर्क होता है। एक बच्चा पढ़ाई में इंटेलिजेंट होगा, दूसरा नहीं होगा, एक शांत स्वभाव का होगा, एक क्रोधी होगा, जबकि वो एक ही माता पिता के बच्चे, एक जैसी पालना मिली है, क्योंकि पूर्व जन्म से आत्मा संस्कार लाई है। दूसरा संस्कार माता पिता से भी मिलते हैं, जिसको हेरिडिटी का इफेक्ट कहते हैं। और तीसरा संस्कार कंपनी से, संघ से, वातावरण से मिलते हैं। किसी बच्चे के पहले के संस्कार बहुत अच्छे थे लेकिन आगे उसको कंपनी खराब मिल गई तो धीरे धीरे संस्कार बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। किसी के संस्कार अच्छे नहीं थे पर उसको कंपनी अच्छी मिल गई तो संस्कार सुधरने शुरू हो जाएंगे। तो तीसरा संस्कार कंपनी से मिलते हैं, और चौथा संस्कार अपने मनोबल से मिलते हैं, विल पावर जब हमारी स्ट्रोंग होती है। हैं, कुछ लोग देखो उनकी इतनी विल पावर स्ट्रोंग होती है, कैसी भी परिस्थितियां हो मुझे इस लक्ष्य तक पहुंचना ही है और पहुंच जाते हैं, तो विल पावर। और पांचवें होते हैं ओरिजिनल संस्कार। तो ओरिजिनल जो सात गुण बताए थे ना, सेवन वैल्यूज, वो हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं। जब हम भगवान के पास से आए थे इस सृष्टि पर तो आत्मा शांत थी, शुद्ध थी, पवित्र थी, आनंद से भरपूर थी, प्रेम से भरपूर थी। एक छोटे बच्चे के अंदर ये सारे गुण झलकते हैं। तो इस प्रकार से पांच तरह के संस्कार हम सबके पास हैं। अब हमें अपने संस्कारों को, किसी भी तरह की जो परतें उसके ऊपर जमी हैं, उसको मेडिटेशन से साफ करना है, शुद्धिकरण करना है अपने संस्कारों का। तो इस प्रकार से हम उसी चित्र पर फिर आते हैं कि हम सबके अंदर एक ज्योति है, पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा, जिसमें तीन शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, जिसको हमने देखा। इन तीनों का इकट्ठा नाम ही आत्मा है। आत्मा का हमारे शरीर में बैठने का स्थान भ्रकुटी में है, जहां हम टीका तिलक लगाते हैं। मंदिरों में भक्त लोग टीका लगाते हैं, ये आत्मा के टिकने का स्थान है, बैठने का स्थान है। ये शरीर एक गाड़ी के समान है और आत्मा इसका ड्राइवर है। तो जैसे ड्राइवर जो होता है वो फ्रंट सीट पे बैठता है, जहां गाड़ी को कंट्रोल करने के सब पुर्जे होते हैं, स्टेयरिंग है, ब्रेक है, गियर है। तो आत्मा, ब्रेन हमारा कंट्रोल रूम है और आत्मा कंट्रोलर है, जो इसके समीप बैठ करके आंखों से देखती है, कानों से सुनती है, मुख से बोलती है, मन से सोचती है, बुद्धि से निर्णय करती है। वो जो आत्मा राजा है वो यहां मस्तक में विराजमान है। फिर है कि आत्मा का मूल ठिकाना कौन सा है, असली घर कौन सा है, क्योंकि संसार में तो कुछ दिन के लिए हम सब आए हैं। तो ये तीन लोक का जो चित्र है इसमें दिखाया है कि नीचे ये साकार जगत है, नीला आकाश, सूरज, चांद, सितारे, ये सृष्टि ग्लोब है। इसके ऊपर सूक्ष्म देव लोक है और इससे भी पार जो तीसरा लोक है, जिसे परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम अनेक नामों से याद करते हैं। हम ज्योति पुंज आत्माएं, ज्योति का सितारा आत्मा, उसी परम धाम से इस दुनिया में आते हैं। ये शरीर रूपी वस्त्र पहनते हैं। ये शरीर केवल मात्र एक वस्त्र है, एक ड्रेस है, जिसको पहन करके हम अपना रोल अदा करते हैं। तो हम सबका असली घर परम धाम है और वहां से ही उतर करके हम इस सृष्टि मंच पर आते हैं। तो अब हमें आत्मचिंतन करना है, मुख्य बात ये है। और आत्मा का जो एक एक गुण है उसकी हमें अनुभूति करनी है। जब हम आत्मचिंतन करेंगे, आत्मदर्शन करेंगे, तो धीरे धीरे हमारी आत्मिक शक्तियों का विकास होगा। क्योंकि हमने ये तो जाना कि मैं आत्मा शांत मूर्त हूं, शुद्ध हूं, पवित्र हूं और मेरे ओरिजिनल संस्कार भी बहुत श्रेष्ठ हैं, लेकिन वो संस्कार अब कैसे उनको उभारें हम? तो हमें अपने मन को बार बार ट्रेनिंग देनी है, मन के अंदर बार बार अच्छा चिंतन करना है। जैसे देखो, ट्रेनिंग देकर के एक जंगली जो जानवर होते हैं ना, उनको भी कितना साध लेते हैं वो, सर्कस के अंदर कितने अच्छे अच्छे करतब दिखाते हैं, बंदर है, हाथी है, हैं, उनको ट्रेनिंग देकर के और उनको कितनी अच्छी वो एक्टिविटी करते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि बार बार के अभ्यास से, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। तो हमें बार बार कौन सी प्रैक्टिस करनी है? जो हम भूल गए हैं वो अपने आप को याद दिलाना है। आत्मा तो हमारे अंदर ही है, पहले भी थी, लेकिन हम आत्मस्मृति को भूलकर ये बॉडी कॉन्शियस हो गई, दे अभिमान में आ गए और आज इंसान की जो सारी समस्याएं हैं, जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, उनका जो मूल कारण है वो बॉडी कॉन्शियसनेस है, दे अभिमान। जब अपने को शरीर समझते हैं तो काम विकार पैदा होता है, काम वासना पैदा होती है, शरीर समझने से और शरीर देखने से। जब अपने आप को देह समझते हैं और काम विकार की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध पैदा होता है। आज पूरे समाज में हम चारों तरफ नजर दौड़ाएं तो काम और क्रोध, और खास करके जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो इस देश का भविष्य है, कितने अनर्थ हो रहे हैं दुनिया के अंदर। जितनी ये जो गलत घटनाएं हैं, रेप है, और हिंसा है, उसका कारण क्या है? क्योंकि ये विकार आत्मा पर इतने हावी हो गए हैं कि ना चाहते हुए भी उससे वो कर्म करा देते हैं। और कुछ ना कुछ तो हर व्यक्ति के अंदर है। आज हम पारिवारिक रूप से देखें, हर घर के अंदर कहीं ईगो है, मैं बड़ा हूं, मेरी बात क्यों नहीं मानी गई। ईगो के कारण टकराव है। हम अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन देते हैं, बहुत अच्छे स्कूलों में उनको पढ़ा देते हैं, अच्छे से अच्छे पदों पर पहुंचा देते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास तो प्रैक्टिकल ऐसी कुछ बातें आती हैं। एक बार एक कपल आया जिनकी मैरिज को 6 मास हुए थे। हस्बैंड जो थे वो भी बहुत ऊंचे पद पर थे, बहुत बड़े इंजीनियर थे, 1 लाख उनकी जो सैलरी थी वो पर मंथ की थी। वाइफ थी वो भी जॉब करती थी, 80,000 वो भी कमा रही है, लेकिन तलाक की नौबत आ गई। किस चीज की कमी छोड़ी है पेरेंट्स ने? अच्छी एजुकेशन दी, अच्छे पद पर पहुंच गए, धन भी है, साधन है सब, लेकिन कमी कहां पर है? विचार करके देखो कहां पर है। सब कुछ दे रहे हैं अपने बच्चों को, संस्कार नहीं दे रहे, संस्कार नहीं दिए बचपन से। और आज के समय में संस्कार कौन दे रहा है? वो दादी नानी की जो बचपन की कहानियां होती थी बच्चों को, वो बहुत कुछ सिखा जाती थी। आज तो वो सिस्टम ही खत्म हो गई। आज वो जो कुछ भी सीख रहा है वो मोबाइल से, इंटरनेट से सीख रहा है, और उसमें क्या सीख रहा है, और उसके लिए माता पिता का ध्यान भी नहीं है। एक दिन एक महिला आई, कहती है, दीदी मेरा बच्चा बड़ा एक्टिव है, बड़ा स्मार्ट है, अभी वो 6-7 साल का है पर मोबाइल में सब कुछ चला लेता है। बड़ी खुश हो रही थी। ये खुशी की बात नहीं है, ये दुख की बात है। कौन से संस्कार मिल रहे हैं हमारे बच्चों को? हम अपना पुराना इतिहास देखें, जीजाबाई का नाम सबने सुना होगा, शिवाजी को शिवाजी बनाने वाली उसकी मां जीजाबाई थी। हमारे इस भारत देश के अंदर, हमारी सनातन संस्कृति के अंदर कुछ संस्कार होते हैं जो बच्चों को दिए जाते हैं। कितने संस्कार होते हैं, कितने होते हैं? आज तो हम ये भी भूल गए कि कितने होते हैं। 16 संस्कार होते हैं। सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। जब एक बच्चा मां के गर्भ में आता है उस समय भी कुछ कुछ ऐसी पॉजिटिव एनर्जी उसको दी जाती थी। नामकरण संस्कार से पहले 2-3 संस्कार और हो जाते हैं। जातक संस्कार, जिसमें बच्चे की जीवा पर पिता ओम लिखता है, सलाक से, शहद से, और उस समय भी उसको कुछ पॉजिटिव एनर्जी दी जाती है। फिर कान भेद संस्कार, अध्ययन संस्कार, विवाह संस्कार, और अंतिम संस्कार कौन सा होता है? 16वां, अंत्येष्टि। तो ये संस्कार हुआ करते जिसमें बच्चे को वो एनर्जी, उनको तैयार किया जाता था। और मां जीजाबाई जब वो गर्भ में थे तभी से उसके लिए बहुत अच्छा सोचती थी, और जब शिवाजी छोटे से थे 2 मास के, तो वो उन्हें लोरी सुनाया करती थी कि देश दुखी एक वीर बिना, एक वीर बिना रणधीर बिना। उस समय मुस्लिम का राज्य था, तो कहती थी इस देश को एक वीर की जरूरत है, एक रणधीर की जरूरत है, और वो तू बनेगा। अब वो इतना छोटा सा बच्चा, कुछ समझ नहीं रहा, लेकिन वो अपनी थॉट्स की जो एनर्जी है वो उस बच्चे को दे रही है। और वही शिवाजी जब थोड़े से बड़े हुए तो उसको गीत सुनाया करती थी कि जो है ना, ऐसी प्रेरणादायक बातें देश प्रेम की, देश भक्ति की, कि तू राम कृष्ण का वंशज है। वो तब थे, सतयुग में थे, त्रेता में थे, वो तब थे लेकिन तू अब है, तू राम और कृष्ण की छवि लेकर पैदा हुआ है और उन्हीं संस्कारों के कारण जो बचपन से मिले वो शिवाजी क्या बन गए। तो माताओं को बच्चों का निर्माण करना है, पेरेंट्स को, और उससे पहले अपना निर्माण करना है अपने संस्कारों का। तो मेडिटेशन वो विधि है जिससे पहले हम अपने संस्कारों को परिवर्तन करेंगे और फिर हम अपने बच्चों को वो संस्कार दे सकेंगे, अपने घर के वातावरण को अच्छा बना सकेंगे। क्योंकि बच्चे वो नहीं करते हैं जो आप कहते हो, बच्चे वो करते हैं जो आप करते हो। अगर बच्चे को बार बार मना करो कि जो है ना टीवी नहीं देखना, मोबाइल नहीं करना, और खुद मां लगी हुई है, फादर भी लगे हुए हैं, आजकल तो घर का सीन ही अलग होता है, जितने मेंबर हैं सब अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, तो उस बच्चे को आप कितना भी कहो ना वो कभी नहीं मानेगा। जब उसको कहा जाता है ये व्यसन अच्छे नहीं है, इनको यूज नहीं करना है, तो बच्चा जब ये देखता है कि घर में बाप पी रहा है, स्कूल में टीचर पी रहा है, फिल्म में हीरो पी रहा है, वो सोचता है ये कोई बहुत जरूरी चीज है और ये मुझे ऐसे ही मना कर रहे हैं। इसलिए पेरेंट्स को सैंपल बनना पड़ेगा, एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। ठीक है, आजकल की कुछ ऐसी एजुकेशन सिस्टम है हमारा कि उन चीजों की जरूरत होती है, लेकिन बड़े प्यार से उन्हें वो चीजें समझानी है कि जितना जरूरी है वो यूज करो, पर जो अपनी इतनी एनर्जी है सारे दिन भर की वो उसके पीछे खराब नहीं करनी है। और उसके लिए एग्जाम्पल पेरेंट्स को बनना पड़ेगा। और उसके लिए कोई लंबा चौड़ा विधि विधान नहीं है, आप थोड़ा सा जीवन में मेडिटेशन की शुरुआत करें। सुबह उठते ही 15-20 मिनट और रात को सोने से पहले ये आत्मचिंतन करें कि मैं वास्तव में कौन हूं, मैं इस जगत में किस लिए आया हूं, मेरी असली पूंजी कौन सी है जो मेरे साथ जाएगी। भले ही ये कहा जाता है कि इंसान खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा, लेकिन यहां ये भी सिखाया जाता है कि हर इंसान कुछ लेकर आता है और हर व्यक्ति जब इस दुनिया से विदा होगा तो वो कुछ लेकर जाएगा। लेकर आया है इसका क्या सबूत है? हम देखते हैं एक बच्चा झुग्गी झोपड़ी में पैदा होता है और एक बच्चा राजमहल में कोठी में पैदा होता है, तो ये फर्क क्या भगवान ने किया? किसने किया ये फर्क? किसने किया? भगवान ऐसा कर सकता है? जो बिल्कुल निष्पक्ष है, जो न्यायकारी है, जो दयालु है, वो एक बच्चे को झुग्गी झोपड़ी में भेज दे दुखी होने के लिए और एक बच्चे को कोठी में भेज दे, ये अन्याय कर सकता है भगवान? नहीं कर सकता। ये अपने ही कर्म हैं और कर्मों से जो संस्कार बनाए हैं, तो पूर्व जन्म से आत्मा जैसे संस्कार लेकर आई वैसे ही घर में उसका जन्म होता है। तो इसलिए हम कुछ साथ लाए हैं और जिस दिन हम इस दुनिया से विदा होंगे, इस दुनिया की तो कोई भौतिक चीज नहीं ले जा सकते, लेकिन अपने श्रेष्ठ कर्म और दुआओं की पूंजी हम साथ लेकर के जाएंगे। तो जब हम आत्मचिंतन करते हैं, स्वचिंतन करते हैं, तो ये आत्मा का चिंतन हमें याद दिलाता है कि मुझे अपने संस्कारों का शुद्धिकरण करना है, वो मेरी असली पूंजी है जो इस जीवन में भी मुझे खुश रखेगी और आगे आने वाले समय में भी मैं सदा खुश रहूंगा। तो दुआएं और पुण्य कर्म वो मेरे साथ जाएंगे। तो इसलिए हमें ये लक्ष्य रखना है कि मैं दुआओं की पूंजी जमा करूं। दुआ, दुआ क्या चीज होती है? दुआ कमाने के लिए कोई लंबे चौड़े दान पुण्य करें, कोई हॉस्पिटल धर्मशाला बनाएं, वो जरूरी नहीं है। आपके घर के अंदर आपके बुजुर्ग माता पिता हैं, उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप 5 मिनट 10 मिनट रोज बैठो, उनका हालचाल पूछ लो, उनसे प्रेम से बात कर लो, उनके अंदर से दुआ निकलेगी। आपकी गाड़ी का ड्राइवर है, कभी 2 मिनट उसके हालचाल पूछ लो, उसके परिवार का हालचाल पूछ लो, उसे कोई जरूरत है तो उसकी मदद कर दो। वो सबसे बड़ा पुण्य है, उसके अंदर से दुआ निकलेगी। और कहते हैं दुआ जीवन में वो काम करती है जो दवा नहीं करती है। आपने कई बार देखा होगा, बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी चकनाचूर हो गई, लेकिन जो अंदर बैठे थे उनको खरोंच भी नहीं लगी। और कई बार घर में ही थे, जरा सा फिसल के गिरे और ब्रेन हैमरेज हो गया और गए। तो वहां किस चीज ने बचाया? दुआओं ने। इसलिए अपने जीवन में दुआएं लेनी है रोज, हर रोज किसी ना किसी के लिए कुछ अच्छा करना। अच्छा, फिर दुआएं सिर्फ इतना ही नहीं, आप किसी को प्यार से बात करते हो। देखो कितना हम फ्री में दुआएं कमा सकते हैं। किसी का मनोबल बढ़ाया, किसी गिरे हुए को ऊपर उठाया, कोई बड़ा हतोत्साहित था, आपने उसका हौसला बढ़ाया कि कोई बात नहीं, ये परीक्षा आई है और चली जाएगी, उससे भी हम दुआ कमा सकते हैं। और ये दुआओं का धन हमें अंदर से खुश रखेगा। बाहर की चीजें घर में कितनी भी भर लो, बढ़िया से बढ़िया सोफा, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी, बढ़िया से बढ़िया पर्दे, लेकिन जो अंदर की खुशी है वो साधनों से नहीं मिलेगी, वो दुआओं से मिलेगी, दुआओं से। तो इसलिए हम सबको दुआओं का धन जीवन में कमाना है। और उसके लिए रोज थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव थॉट्स, आत्मचिंतन करें, परमात्म चिंतन करें, थोड़ी देर के लिए भी मेडिटेशन करें, तो हम जीवन में बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। तो ये एक बड़ा सुंदर विचार सामने दिखाया हुआ है, मैं प्रकाश पुंज। आज ये काम आपको करना है, होमवर्क है। आत्मचिंतन में मैं कौन हूं, जैसे बच्चे के मस्तक में एक ज्योति चमक रही है, तो हम सबके अंदर एक जागती ज्योत है। मैं प्रकाश पुंज, शक्ति पुंज आत्मा, खुशियों के सागर की संतान हूं। मैं उस ईश्वर की संतान हूं जिसका परिचय भी आपको अगले सत्र में मिलेगा। मैं प्रकाश पुंज, शक्ति पुंज आत्मा, खुशियों के सागर की संतान हूं, खुशियों के खजाने का मालिक हूं। क्योंकि जो बाप का होता है ना, वही बच्चे का होता है कि नहीं? जय, जिस दिन बच्चा पैदा हुआ वो बाप की पूरी प्रॉपर्टी का मालिक होता है। वो ईश्वर खुशियों का भंडार है, खुशियों के खजाने का मालिक है, और मैं उसकी संतान हूं, तो खुशियों पर मेरा भी अधिकार है। और पहले से ही अपने आप को ये विचार दे दें कि मुझे जीवन में सदा खुश रहना है, जब तक जीना है। एक दिन के लिए नहीं, जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। तो ये जैसा हम सोचते हैं ना, कहते हैं एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। जब हम ये सोचेंगे बार बार कि मैं तो एक शक्ति पुंज आत्मा हूं, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, और मैं खुशियों के खजाने की मालिक हूं, खुशियों के सागर की मैं संतान हूं, और मुझे जीवन में सदा खुश रहना है। जब बार बार ये चिंतन करेंगे तो ये चिंतन खुशी वाली एनर्जी को हमारी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये वैज्ञानिक सिद्धांत है, कि वही चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएगी जो आप बार बार सोचेंगे। क्योंकि मनुष्य के दुखों का कारण, बहुत बड़ा कारण ये है कि वो बार बार सोच रहा है, मैं तो बड़ा गरीब हूं, मैं तो बड़ा दुखी हूं, मेरा तो भाग्य में पता नहीं क्या है, मेरे भाग्य में क्या है, और ये नेगेटिव एनर्जी उसको और ज्यादा नेगेटिव बना देती है। तो ये संकल्प सब करेंगे, एक बार सब रिपीट करेंगे इस पावरफुल पॉजिटिव थॉट को जो हमें बार बार करना है, मैं प्रकाश पुंज शक्ति पुंज आत्मा खुशियों के सागर की संतान हूं, खुशियों के खजाने का मालिक हूं, मुझे सदा खुश रहना है, जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। अभी हम जो हमने आज का लेसन लिया आत्मा के बारे में, तो अभी हम कुछ समय के लिए आत्मचिंतन करेंगे। तो अपने आप को हम सामने देख रहे हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, आज परिचय मिला ना हमें, मैं इसके अंदर एक चेतना हूं, एक शक्ति है, और कहां बैठी है वो इस शरीर में, मस्तक के मध्य में बैठी है। तो अपने आप को हम फील करेंगे, रियलाइज करेंगे कि मैं इस शरीर के अंदर मस्तक के मध्य में एक प्रकाश पुंज ज्योति पुंज आत्मा हूं। इसको महसूस करना है, ये इतना बड़ा जो मेरा शरीर है ना, ये तो केवल मिट्टी का कमरा है, और मैं मस्तक में एक जगता हुआ दीपक हूं, एक लाइट हूं, एक एनर्जी हूं, और अपने मूल स्वरूप में मैं बिल्कुल शांत हूं, शुद्ध हूं, पवित्र आत्मा हूं। जो ओरिजिनलिटी है ना उसको सोचना शुरू करो, जो हम बन गए वो नहीं सोचना है कि मैं तो बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा अशांत हूं, नहीं, जो मेरा ओरिजिनल स्वरूप है, जो मेरी ओरिजिनल आइडेंटिटी है, उसका चिंतन करें कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, मैं तो खुशियों के सागर की संतान हूं, मुझे अपने चित्त में सदा खुशी का ही चिंतन रखना है। सब बीती बातों को बिंदी लगा दो, जो बातें कड़वी पकड़ी हुई हैं मन के अंदर उनको छोड़ करके और अपने शुद्ध चिंतन में स्थित होना है कि मैं कौन हूं, मैं किसका हूं। तो अभी हम सब अपनी डायरी पेन को एक तरफ रख के बिल्कुल सीधे होके बैठेंगे, 5 मिनट के लिए हम आत्म दर्शन करेंगे, आत्म अनुभूति करेंगे। आपकी मदद के लिए मैं कुछ शब्द उच्चारण करूंगी, आपको वो शब्द बोलने नहीं है, केवल आपको वैसा वैसा फील करना है, अनुभव करना है अपने आप को वैसा वैसा। तो चलें कुछ क्षण के लिए हम चलते हैं अपने अंदर की ओर, अपने आप से पूछें, मैं वास्तव में कौन हूं? मैं इस पंच भौतिक शरीर में मस्तक के मध्य में एक चैतन्य शक्ति हूं। एक जागती ज्योत हूं, अति सूक्ष्म प्रकाश पुंज हूं, मस्तक के मध्य में एक हल्का सफेद सितारा हूं, मन की आंखों से अपने स्वरूप का दर्शन करें। मैं एक हल्का प्रकाश पुंज आत्मा, मुझ आत्मा सितारे से शांति की तरंगे निकल रही हैं। मैं प्रकाश पुंज हूं, मुझ आत्मा सितारे से पवित्रता का प्रकाश मेरे चारों तरफ फैल रहा है। मैं ज्योति पुंज आत्मा अपने असली स्वरूप में बिल्कुल शांत हूं। शुद्ध हूं। पवित्र आत्मा हूं। मैं चेतना शक्ति इस देह की कर्म इंद्रियों का राजा हूं। मन बुद्धि और संस्कारों की भी मैं आत्मा मालिक हूं। मुझे सदा अपने शांति के स्वरूप में रहकर सारा दिन अपने कर्म क्षेत्र पर रहते हुए सबके साथ शांति का व्यवहार करना है। मैं शांत चित्त आत्मा हूं। मुझे सारा दिन शांति के बोल बोलने हैं। मैं पवित्र आत्मा हूं। मुझे सारा दिन सृष्टि मंच पर अपना कर्म और व्यवहार बहुत पवित्र रखना है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। मुझे सबके साथ प्रेम से बोलना है, प्रेम का व्यवहार करना है। मैं ज्योति पुंज आत्मा ईश्वर पिता की संतान हूं। ये सारी सृष्टि में जितने भी लोग हैं सब आत्माएं हैं, सभी प्रभु पिता की संतान हैं, सब अपने हैं। वसुधैव कुटुंबकम्। इसलिए मुझे सबके प्रति शुभ भावना रखनी है, सबका कल्याण हो। किसी की बात चित में पकड़ी हुई है उसे भी मैं क्षमा करता हूं और आज से उन बातों को छोड़कर मैं बिल्कुल हल्का सितारा आत्मा हूं और सबके लिए ये शुभ कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। सब निरोगी हों, सब सुखी हों, कोई भी दुखी ना हो। ऐसी शुभ कामना मैं आत्मा सदा सबके लिए रखती रहूंगी। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। ऐसा ही आत्म चिंतन, शुद्ध चिंतन हम सब सारा दिन भी करेंगे और रोज भी करेंगे। ओम शांति।
दीदी का तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद। आज हमने जाना हम कौन, हम कौन है ना, हम कैसी आत्मा। आज दीदी ने बताया ना, होमवर्क दिया, सुबह उठते और रात को भी कुछ समय अपने लिए निकालना है और चिंतन करना है, मैं कौन हूँ। प्रकाश का पुंज हूँ, खुशियों के सागर का संतान हूँ। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया कि जैसे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो वीकनेस हो जाती है, और आत्मा के अंदर किस चीज की कमी होती है, गुणों की कमी हो जाती है। सुख शांति प्रेम आनंद, ये हम आत्मा के गुण हैं। तो इसकी कमी होती है तो आत्मा कमजोर हो जाती है। तो सुबह उठते ही संकल्प करना है, मैं खुशियों के सागर की संतान हूँ। दीदी हम जरूर इसको करेंगे। और आज हम देख रहे थे कि जब आप करवा रहे थे तो हम उसको महसूस कर रहे थे, ना केवल परिचय जाना बल्कि उसको अनुभव भी कर रहे थे। दीदी आपका फिर से एक बार बहुत 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 धन्यवाद। आप सभी पुणे 10 बजे यहाँ फिर से आएंगे, आपका आज इनॉग्रल सेशन है, आप 10 बजे से पहले ही पहुंचे। धन्यवाद।